ओम शांति। क्लास चल रहा था 10 नंबर के रजिस्टर में 31 पेज पर मध्य में 91 का था क्लास। बात चल रही थी कौरव और पांडव का अर्थ नहीं समझते हैं। तो कौरव का अर्थ कौ अर्थात कौआ और रव माना शोरगुल अर्थात कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं। लेकिन एक्स ऐसी कुछ नहीं करते, जितना बोलते हैं उतना करते नहीं हैं। और पांडव पद से बनता है पांडव, पंडयति माने ले जाता है, जो पार ले जाने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। तो रास्ता दिखाने वाले के बच्चे भी कौन हुए? रास्ता दिखाने वाले बच्चे होंगे पांडव होंगे। तो खुद को रास्ता मिला होगा तब तो दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। शास्त्रों में जो लिखा है वही सुनाते रहते हैं, अर्थ नहीं समझते। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है, हद की गीता भी और बेहद की गीता भी पढ़ी हुई है। जब ये ज्ञान मिला तो विचार चला गीता में ये लड़ाई आदि की बातें क्यों लिखी हुई है। कृष्ण भी तो गीता का भगवान नहीं है, ये तो झूठा शास्त्र है। झूठा क्यों है? क्योंकि देहधारी का नाम गीता शास्त्र में डाल दिया प्रणेता के रूप में। इनके अंदर बाप बैठा था तो इसने गीता को एकदम छोड़ दिया, बोला अब हाथ भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो सारी आयु पढ़ते आगे भी पढ़ते रहते। अभी समझते हैं भक्ति में कितना अंधेरा है, अभी बाप कितना सोझरा देते हैं, आत्मा को ही सोझरा देते हैं। तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में भी तुम्हें याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे? इस बात को थोड़े ही जानते थे कि बलिहार जाना कैसे होता है। बलिहार जाना माना तन से मन से धन से समय से संपर्क से संबंध से परमात्मा के ऊपर अर्पण हो जाना। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म और हमारा है अभी लौकिक जन्म है। फिर अलौकिक कब होगा? हाँ, अलौकिक जन्म असली तब कहा जाए जब आत्मा को अपने 84 जन्मों में से जो मुख्य पार्ट है उसकी पहचान हो जाए कि मैं कौन सा देवता या देवी बनने वाला हूँ। तो वो हुआ अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, खुद कहते हो ये तो वो ही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं, वही टीचर के रूप में राजयोग सिखाते हैं। और तो कोई राजयोग सिखला ही न सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा लेनी भी चाहिए ना। पहले क्या करें, बाप का बने और बन करके फिर उससे टीचर के रूप में शिक्षा ले। ऐसे नहीं कि बाप के बने नहीं और शिक्षा लेना शुरू कर दी। कहते ही है बाप टीचर फिर सतगुरु, तो जरूर नंबर बार एक्ट में आते हैं। बाप के बने तो शिक्षा कैसे लेते हैं? बाप के बच्चे बनेंगे तो बाप पढ़ाएगा नहीं, बच्चों को अनपढ़ रखेगा क्या? तो बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा लेनी चाहिए, गदगद होना चाहिए हमको बाप पढ़ाते हैं टीचर बनकर। अगर छीछी बना तो फिर वो खुशी आएगी नहीं, क्यों? छीछी बना तो इससे साबित हो गया कि बाप के जो बच्चे बने थे अब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन नहीं रहे, तो वो खुशी नहीं आएगी। बल कितना भी माथा मारे फिर जैसे हुआ हमारा जात भाई नहीं है जो नीचे गिरा। यहाँ कितने सरनेम होते हैं मनुष्यों के, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, यह है बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानते ही नहीं है। शिव बाबा को तो सर्व जाति कह कुत्ते बिल्ली में ढकेल दिया। ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता है। एक तो ग्रैंडफादर की बात बताई, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और फिर ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं। तो ग्रैंडफादर अलग हुआ और ब्रह्मा अलग हुआ। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के, ब्रह्मा को सूक्ष्म बतन में ले गए, बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। सूक्ष्म बतन है फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया? वहां बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या? कहां सूक्ष्म बतन में थोड़े ही अडॉप्शन होते हैं। किसको भी पता नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। जीवन कहानी को जानते नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा क्या करते हैं। जरूर आकर के बच्चे बनाते होंगे। बाप ने समझाया ये हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग का गीता का एपिसोड है। युग एपिसोड मानो युग, पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन बनना कैसे बनना है ये दुनिया में किसी को पता नहीं है। तीसरा पेज, साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, और यहाँ तो बताते हैं कि अपनी देह को भी भूलना है और देह के सर्व संबंधों को भी भूल जाओ। एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कब भस्म हो जाएंगे? जब देह सहित देह के सब धर्मों का त्याग करेंगे। ऐसे भी नहीं कि ये भाना आ जाए कि मैं अमुक धर्म की बीज रूप या आधार मूर्त आत्मा हूँ। वो भान आया तो भी देह का धर्म छोड़ा नहीं, तो देह के सब धर्म छोड़ने पड़े, वरना कोई भी भान रहा, चलो समझ लिया कि मैं बीज रूप आत्मा हूँ, लेकिन बीज रूप आत्माएं भी तो अलग अलग धर्मों की हैं। कोई किस धर्म का बीज है, कोई किस धर्म का बीज है, तो अगर बीज रूप आत्मा की स्मृति तो आई और फिर ये बुद्धि में पक्का बैठ गया कि मैं तो संन्यास धर्म की बीज रूप आत्मा हूँ या मुस्लिम धर्म की बीज रूप आत्मा हूँ या और किसी धर्म की बीज रूप आत्मा हूँ, तो ये जो भान है वो फिर पाप जरूर चढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि अपनापन आ गया किसमें, अमुक अमुक धर्म में। तो वो जो अपनापन आ गया वो फिर नीचे ले जाएगा, पाप कर्म कराए देगा। तो एक बाप को याद करो तो पाप सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कब नहीं कहेंगे कि तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे, वो तो बाप कोई नहीं जानते हैं। हम सो का अर्थ ही उल्टा कर देते हैं। अर्थ उल्टा क्या कर देते हैं, हम सो सो हम, इसका क्या अर्थ कर देते हैं,
शिवो
हम, जो हम है सोई शिव है, जो शिव है सोई हम है। तो अपने को परमात्मा साबित कर देते, लेकिन ये तो बात उल्टी हो गई। सो हम का मतलब हम सो देवता हैं, बाकी हम सो परमात्मा नहीं है। उनको तो लज्जा नहीं आती है जो कह देते हैं सो हम है? ऐसे क्यों कह दिया कि सो हम, जो वो है सो ही हम है।
यह कैसी करती है,
किसको फॉलो किया,
ब्रह्मा को
नहीं ना, उन्होंने फॉलो किया प्रजापिता को, क्योंकि प्रजापिता में परमात्मा बाप आता है, शिव ज्योति बिंदु आता है, तो वो तो एक ही स्वरूप हो गया। तो जब एक ही स्वरूप हो गया तो कहते हैं जब ये कर सकता है ये पुरुषार्थ, तो हम नहीं कर सकते क्या, तो समझते हैं सो हम भी सो ही परमात्मा। लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता, परमात्मा कोई सर्वव्यापी नहीं है, उनको लज्जा नहीं आती है। किस बात में, इसमें लज्जा की क्या बात हो गई है? अपने अंदर ये महत्वाकांक्षा जागृत करना कि जो परमात्मा है सो ही हम आत्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अपनी आत्मा को परमात्मा जैसा ऊंचा बनाना, महत्वाकांक्षी बनाना, ये कोई बुरी बात है क्या? हाँ बुरी बात है। क्यों, कोई बच्चा कहे, बाप का बच्चा अपनी माँ के सामने कि मैं बाप हूँ, ये बाप नहीं है, तो माँ बाप क्या कहेंगे, है तेरे को लज्जा नहीं आती? तो ऐसे ही बाप कहते हैं लज्जा नहीं आती। सो हम कहा अर्थ ही उल्टा कर देते हैं। गीता में बाप ने कहा है इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ, इन साधुओं का जिन्होंने सब उल्टा कर दिया, गीता में भी उल्टा नाम डाल दिया। गीता में नाम होना चाहिए गीता पति भगवान का, उन्होंने गीता का पति किसको बना दिया, कृष्ण बच्चे को। तो बाप बैठे समझाते हैं कि ये ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गांवड़े का छोरा था, कौन, ब्रह्मा। 84 जन्म लिए हैं ना, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, तो नई दुनिया सो फिर पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। धारणा कब कर सकते हैं, जब बुद्धि का ताला खुला हुआ हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे बुद्धिहीन, ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान है और यहाँ बुद्धिहीन है। बुद्धिमान कब, संगम युग के सतयुग की शूटिंग काल में, सतयुग की पीरियड में, सतो प्रधान स्टेज में। सामने देखो ये पैराडाइज के मालिक है ना, कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गांवड़े का छोरा बना, तुम बच्चों को ये धारणा करके फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। गांवड़े का छोरा क्यों बना और विश्व का मालिक कैसे बना, इसमें मुख्य बात किस बात की है? प्योरिटी की। लिखते भी हैं बाबा माया ने हमको गिराई दी है। आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बात किसकी हो रही थी? गांवड़े के छोरा कृष्ण की। वो गांवड़े का छोरा कैसे बना है? इम्प्योरिटी के कारण गांवड़े का छोरा बना। नाम है ना श्याम सुंदर, तो नाम कहाँ का है श्याम सुंदर? संगम युग का नाम है ना। संगम युग में इम्प्योर भी है तो प्योर भी बनता है, तो गांवड़े का छोरा कब बनता? दिखाते हैं यशोदा और नंद बाबा के यहाँ गांव में गऊ चराता था, गोपियों के साथ रात दिखाए हैं, तो अनेकों का संग हुआ एक का है? अनेकों का संग हुआ तो रिजल्ट क्या होगा? श्याम बनेगा, सुंदर बनेगा, श्याम बनेगा। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। आंखें क्रिमिनल बन गई है। सबसे ज्यादा संकर अंग किस अंग को लगता है? आंखों को। बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर, फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है। लड़ाई क्यों लगती है? क्योंकि पुरानी दुनिया का विनाश तो होना जरूरी है। ये भी तुम देखना कैसे लड़ाई लगती है। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं, तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया भी कब मिले? जब विनाश हो। पुरानी दुनिया जब तक विनाश नहीं हुई है तब तक नई दुनिया स्थापन भी नहीं हो सकती। फिर जब तक स्थापना नहीं हुई है तब तक पुरानी दुनिया का विनाश भी नहीं हो सकता। तो अरस परस है, दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे स्थापना होती जाएगी यानी संगठन बनता जाएगा नया, वैसे वैसे पुराना खलास होता जाएगा। 76 के लिए बाबा ने घोषणा कराई कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो जरूर नया संगठन एक तरफ उभरता है और दूसरी तरफ पुराना संगठन, जिनकी बुद्धि में उभरता है उन्हीं की बुद्धि में पुराना संगठन ध्वस्त हो जाता है। आप मुए मर गई दुनिया। आप मुए का मतलब उस पुरानी दुनिया से बुद्धियों को हटा दिया, माया मोह ममत्व तोड़ दिया, तो जैसे उस दुनिया से मर गए, तो जैसे वो दुनिया ही खलास हो गई। तो बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर तुम बच्चे नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। बाबा नहीं स्थापन करते हैं, स्थापन करता कौन है? बच्चे। बाबा पति तो थोड़े ही है जो योग लगाकर पावन बनेंगे। नहीं, तुम बच्चे पतित से पावन बनते हो। कौन से बच्चे? तुम बच्चे। तो उसमें कौन कौन बच्चे आ गए हैं? तुम बच्चे जब बाबा कहते हैं तो सबसे पहले कौन से बच्चे तुम बच्चों की लिस्ट में आए हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। शंकर तो पति तो होता ही नहीं, यहाँ तो बोल दिया बाबा पति तो थोड़े ही है जो योग लगाकर पावन बनेंगे। फिर उन्हें तो योग लगाने की दरकार नहीं। अच्छा योग लगाने की दरकार नहीं तो शंकर को याद में क्यों बैठे हुए दिखाया गया?
मन बुद्धि रूपी से काम करती है।
मन बुद्धि रूपी, अरे मन बुद्धि से ही याद की जाती है और कैसे याद की जाती है?
कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करती।
अच्छा कर्मेंद्रियों से कोई काम न करे लेकिन याद तो करता है, बुद्धि कोई कर्मेंद्रिय थोड़े ही है। मन बुद्धि कोई कर्मेंद्रिय तो नहीं है, तो मन बुद्धि से याद क्यों करता है जब पतित नहीं है तो? है चित्रों में तो उसको याद करते हुए तो दिखाया गया कि याद में बैठा हुआ, चलो कोई कर्म नहीं करता है, शंकर कुछ भी नहीं करता है कर्मेंद्रियों से, लेकिन याद तो करता है। भाई पतित नहीं है तो याद क्यों करता है? है बाबा ने तो बोल दिया कि शंकर को पतित नहीं कहेंगे, है तो फिर वो याद क्यों करता है? है बताओ। अरे शंकर का मतलब ये है तीन आत्माएं हैं मिक्स मिश्रण, कौन कौन सी?
सतो प्रधान शिव, रजो प्रधान ब्रह्म, तमो प्रधान प्रजापिता।
हाँ तो तीनों आत्माएं जो है उनमें प्रजापिता ब्रह्मा टाइटल किसका हो गया?
ब्रह्मा
का। तो ब्रह्मा का टाइटल तो ये ब्रह्मा का जो टाइटल है तो जिसके ऊपर है टाइटल उसी की जिम्मेवारी हो गई। तो वास्तव में शंकर वाली सोल वो कोई कार्य नहीं करती, याद भी उसमें कौन करता है?
ब्रह्मा
बाप वो याद करता है, क्योंकि जो पतित ही नहीं है उसको याद करने की भी दरकार नहीं है, जो पतित है तो उसको याद करने की भी दरकार है। तो ब्रह्मा 84वें जन्म में पतित, तो पहले जन्म में पावन विष्णु बनता है। और तुम बच्चे पतित से पावन बनते हो तो तुम बच्चे किससे कहा? कहने वाला जरूर मुख से कह रहा है, तो जिसके मुख से कह रहा है वो कौन हुआ? कोई शरीरधारी हुआ। और जिनसे कह रहा है वो कौन हुई? ब्रह्मा और विष्णु, पहले पहले तो वो हुए। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। सेवा किसकी करनी है? और लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा को विष्णु बनने का। तुमने डिमांड किया है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ, तुमको रास्ता बताता हूँ। तो ये डिमांड कब की? तुमने शब्द जो बोला वो जरूर बच्चों से बोला ना? दुनिया वाले तो बच्चे बने नहीं। तुमने डिमांड की पतितों को आकर पावन बनाओ, आकर जाकर नहीं, आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। इसका मतलब कि पति तो कौन हुए? जो बाबा के सामने बच्चे बैठे हुए हैं वो, या बाहर वाले?
बाबा के सामने
वो ही बच्चे पति तो हुए। तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। कौन कहता है ये? बाप। तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज। क्या सहज रास्ता बताता हूँ? कुछ मत करो, मन मना भव हो जाओ। क्या रास्ता? मन मना भव। मन मना भव संस्कृत के तीन अक्षर हैं, तीन शब्द। मत मना भव, मत माना मेरे, मना माने मन में, भव माना समा जा, मेरे मन में समा जा और कुछ कर या न कर। यानी अपने मन के संकल्पों को मेरे मन के संकल्पों में समा दे, मतलब तेरा कोई भी संकल्प मेरे संकल्प के विपरीत न जाए। जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प। अगर ये धारणा पक्की कर ली कि संकल्प मात्र भी हमें बाप का किसी बात में विपरीत नहीं बनना है, तो जब संकल्प मात्र भी विपरीत नहीं बनना है तो वाचा से विपरीत बनने की तो बात ही नहीं, कर्मणा से तो विपरीत बनने की बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि मनसा ही जब अनुकूल हो गई तो मन तो सब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है, मन को बुद्धि कंट्रोल करती है, तो मन को मेरे में लगा दिया, मैं तो बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तो बुद्धि के अनुसार मन चलने लगा, तो मन सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा। तो मन माना भव बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, कितना बढ़िया सहज रास्ता है। कर्मेंद्रियों से भल कुछ भी करो लेकिन मन मेरे में लगाओ। अगर मन लगा रहेगा, हम रसगुल्ला खा रहे हैं, मन हमारा कहीं महबूबा को याद करने में लगा हुआ है, तो रसगुल्ला तो खाया न खाया बराबर हो जाएगा, फिर उसका कोई हिसाब किताब बनेगा ही नहीं। तो मन ले लिया बाबा ने, फिर अब हमें क्या मिलेगा है? कुछ मिलेगा क्या? फिर तो दुनिया की किसी चीज में कोई आनंद आएगा ही नहीं। तो भगवान वाक्य है, सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान वाक्य क्या है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा, ये भगवान वाक्य है। गलती क्या कर दी कि कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया, कि कृष्ण बच्चा कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे कृष्ण बच्चा तो खुद ही क्या है? बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, उसके मन में समा जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वो तो साकार है कृष्ण, तो कृष्ण साकार है, और जो साकार है देहधारी है देहभान में है, उसमें अगर हम समा जाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी? हम भी साकारी देहधारी देहाभिमानी बन जाएंगे। बाप के नेक्स्ट है कृष्ण, क्या नेक्स्ट टू शिव कौन है? कृष्ण। कौन सा कृष्ण? संगम युग का कृष्ण। और सतयुग का कृष्ण वो बाप के नेक्स्ट नहीं है। क्यों? वो बच्चा किसका है? है बाप का बच्चा है ना, तो जिस बाप का बच्चा है वो शिव बाबा नहीं है, है? है? नहीं, जिस बाप का वो बच्चा है वो बाप शिव बाबा नहीं है, वो शिव बाबा है। तो शिव बाबा हुआ फर्स्ट, और नेक्स्ट कौन हुआ? सतयुग का कृष्ण नेक्स्ट टू शिव बाबा हुआ कि नहीं? क्यों नहीं हुआ बताओ? शिव बाबा नहीं होता, वो लक्ष्मी नारायण होता है। अच्छा बाबा ने तो बोला है कि शक्ति पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो बताओ वो शिव बाबा कौन सा हुआ?
जो जन्म का साथी है।
एक आदमी बोलो है, ठीक है? सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश होता है वो शिव बाबा हुआ, वो सदा कायम है इस शक्ति पर। तो जब सदा कायम है तो जब कृष्ण को सतयुग में जन्म देता है तो कायम हुआ कि नहीं? अरे शिव बाबा हुआ कि नहीं? अरे नहीं कहीं, मुरली तो कहती है इस शक्ति पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं, दादा कायम तो
एक शिव बाबा है,
एक शिव बाबा ही है, एक बाबा ही है। अरे शिव बाबा सदा कायम नहीं है सृष्टि पर, शिव बाबा सदा कायम है। तो जब सदा कायम है तो पहले जन्म में कृष्ण को जन्म देगा तो कायम नहीं हुआ। अरे शिव बाप को जन्म नहीं मिलेगा,
शिव बाप का जन्म तो नहीं,
शिव बाप को जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन जिसको पूरी पावर दे दी तो विनाश के बाद वो रहेगा तो शिव बाबा ही क्या? जब तक कृष्ण बच्चे को जन्म नहीं दे तो शिव बाबा के रूप में जो स्वरूप है वो रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका होगा इस सच्ची रूपी रंगमंच पर? कृष्ण को ही होगा। तो जैसे यहाँ शूटिंग पीरियड में फर्स्ट नंबर फर्स्ट शिव बाबा और नेक्स्ट कृष्ण, संगमी भी कृष्ण, वैसे वहां वहां सचयुग में ऐसे ही होगा। नेक्स्ट सचयुग कृष्ण उसका बाप हो गया फर्स्ट। अरे सच्ची रूपी रंगमंच पर कौन हुआ फर्स्ट? बीज हुआ फर्स्ट और पहला पत्ता हुआ नेक्स्ट। वो परम धाम का मालिक है, विश्व का, वो विश्व का मालिक है। परम धाम का मालिक कौन? सुप्रीम सोल शिव। तो परम धाम का मालिक शिव बाबा और वो विश्व का मालिक। अब यहाँ बात विश्व का मालिक कौन हुआ? संगमी जी कृष्ण। सतयुगी कृष्ण को विश्व का मालिक नहीं कहेंगे। सूक्ष्म बतन में तो कुछ होता नहीं है। जब सूक्ष्म बतन में कुछ होता ही नहीं तो शंकर कैसे होगा?
तो
सभी से नंबर वन है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं, स्वर्ग में तो सभी जा न सके। तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी होनी चाहिए, आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती है। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर तुम आते ही क्यों हो? तो कहते थे क्या करें, हम रह नहीं सकते। रोज आता हूँ, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए, आप बिगर मेरी सदगति कौन करेगा। आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें। फिर भी सच तो बोलते थे। बहुत से तो ऐसे हैं कि आते भी रहते और झूठ भी बोलते रहते। अब जरूर वह सुधर गया होगा। कौन? जो उस समय सच बोलने वाले बच्चे थे, जरूर वो अब सुधर गए होंगे। उनको ये निश्चय था, इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। किन द्वारा? इन द्वारा। इस द्वारा नहीं कहा, इन द्वारा। बहुवचन किन द्वारा है? द्वारा मन मीडिया, इन द्वारा मन प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रामकृष्ण द्वारा। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। फिर कल बाद उसी फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्मा है तो सब मिक्सअप है ना। 500 करोड़ एक्टर्स हैं जो मिक्सअप हैं। बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं और उनमें पार्ट भी अविनाशी भरा हुआ है। वो पार्ट कोई कहे कि विनाश हो जाए, ये जो हमने पार्ट बजाई लिया ये हम खलास कर दें, तो वो टैप बिगड़ नहीं सकती। ये टैप तो बिगड़ जाती है। तो कितनी समझाने की बातें हैं। ऐसा क्यों कहा कि ये टैप बिगड़ नहीं सकती? अविनाशी पार्ट आत्मा में नुदा हुआ है, ये ध्यान क्यों दिलाया? ताकि बच्चे समझें कि अब इस समय हम जो एक्ट करेंगे वो कल्प कल्प के लिए अविनाशी हो जाएगी, फिर कोई चांसेस उसको सुधरने का चांसेस नहीं है। तो कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं कि हमारी शूटिंग हो रही है कल्प कल्प की, कोई एक दो जन्म की नहीं, कल्प कल्पांतर की ऐसी शूटिंग हो रही है। तो भूल जाते हैं, समझाए भी नहीं सकते हैं। तो ये भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजा ही स्थापन होती ही है। सत्युग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार आते हैं, यहाँ भी नंबरवार हैं। एक का पार्ट एक ही जाने क्या, हर आत्मा जितना अपना पार्ट गहराई से जान सकती है उसके पार्ट को दूसरी कोई आत्मा उतनी गहराई से नहीं जान सकती। एक का पार्ट एक ही जाने माना, अपना खुद जानता है और या फिर परमात्मा बाप जानता है। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जानी परमात्मा भी जानी, और कोई नहीं जान सकता। एक का पार्ट एक ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का डबल डबल बोल दिया, मात पिता का
और बाप दादा,
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो कितने हिज्जे कर दिए, मात पिता अलग, बाप दादा अलग, रूहानी बाप अलग। रूहानी बाप नमन करता है। मात पिता जिस्मानी हुए या रूहानी हुए?
जिस्मानी।
माता तो जिस्मानी है ही है और बाप भी फिर जिस्म वाला तो होगा, लेकिन निराकारी स्टेज में होगा। तो वो नमस्ते माने नमन करने वाले नहीं, उनका सिर्फ याद प्यार मिलता है। क्यों उनकी नमन क्यों नहीं? मात पिता और बाप दादा बच्चों को झुकते क्यों नहीं?
तो बच्चे देवरमन में
हैं,
बच्चे देवरमन में ज्यादा रहते इसलिए वो
झुकते नहीं। क्यों
देवान
रूहानी बाप क्यों झुकते हैं? रूहानी बाप तो बहुत ऊंची हस्ती है।
जो बच्चे
क्योंकि जिसको रूह है, जिसको रूह कहें उसको तो देह है ही नहीं, तो उसको तो झुकने न झुकने करने में कोई परेशानी है ही नहीं। झुकता और न झुकता कौन? जिसको देह हो। तो माता पिता का जो टाइटल है उस टाइटल का गर्व रखने के लिए ये जरूरी है कि माता पिता बच्चों को नहीं झुकें, झुके कौन? बच्चे झुके। अच्छा, ओम शांति। आज है 7/91 का प्रातः क्लास, 10 नंबर के रजिस्टर में 33 पेज। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। ये क्या बात हुई? बात तो एक ही है कि अलग अलग है? बच्चों से बाप पूछते हैं, बाप माना प्रजापिता, तो प्रजापिता अपने बच्चों से पूछते हैं और आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। आत्माएं वो तो बिंदु बिंदु, उनसे पूछने वाला परमात्मा तो हो गया सुप्रीम सोल शिव। किससे पूछते हैं? आत्माओं से पूछते हैं। और सुप्रीम सोल शिव जिसमें प्रवेश करता है वो प्रजापिता बच्चों से पूछते हैं। ये तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे, पीछे नहीं बैठे हैं, सामने बैठे हैं कि ऊपर बैठे हैं, हैं? क्योंकि शास्त्रों में ऐसे भी दिखाया है कि दिखाते हैं कि भगवान नीचे बैठे हैं, राम, और बंदर ऊपर पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर बंदर बैठे, नीचे भगवान की सभा लगी हुई तो ऐसे बंदरों से बाप बात नहीं करते। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। किन बच्चों से बात करते हैं? रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चों से बात करते हैं। और देह अभिमान में रहने वाले जो बंदर हैं, ऊपर जार पे चढ़ के बैठते हैं, नीचे प्रभु जी भाषण कर रहे हैं और ऊपर से वो बंदर ऊपर बैठ के क्या करेगा तो उनसे बात नहीं करते हैं, वो बच्चे नहीं है बाबा के। आता हूँ लेकिन बात बंदरों से नहीं करता हूँ, क्योंकि बंदर तो भिखारी को कहा जाता है। मैं बात किससे करता हूँ? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। रूहानी बच्चे ही उनके सामने रहते हैं, जिस्मानी बंदर नहीं रहते बाप के सामने। परमपिता परमात्मा के सामने बच्चे बैठे हैं, उनको अपना रथ तो है नहीं। किनको? शिव बाप को, ये तो निश्चय है ना। इस भ्रकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान होता है, है? ये निश्चय कायम रहता है। बाप खुद कहते हैं मैं इनके भ्रकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रकुटी के बीच है तो बाप भी बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा को ही याद करते। ब्रह्मा है नहीं तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। अगर ऊपर नहीं रहता तो फिर प्रतिमा यहाँ ऊपर ही होनी चाहिए, फिर यहाँ क्यों? पूजा किसकी होती है? हैं? प्योरिटी की पूजा होती है। तो अगर ऊपर ही रह करके पवित्रता धारण की, फिर पूजा यहाँ कहाँ से होने लगी? पूजा यहाँ हुई है तो जरूरी यहाँ आकर के उसने कोई ऐसी एक्ट की है जो उसकी पूजा होती है। ये बातें बहुत समझने की हैं, थोड़ी समझने की नहीं है कि बाप एवर प्योर है, परम धाम का वासी है, तो एवर प्योर बाप की पूजा कैसे होती है इस सृष्टि पर? तो जरूर साकार में आकर के वो एक्ट करता है जो एक्ट और कोई नहीं कर सकता। तो उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है, पूजा का आधार है प्योरिटी। तो बाप जितना पूजा जाता है उतना और किसी की पूजा नहीं होती। कि किसी की होती है। बाप की सबसे जास्ती पूजा होती है। दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं देश विदेश में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं। तो इससे साबित होता है कि सबसे जास्ती प्राचीन काल से ही उसकी पूजा होती चली आई। तो पूजा जब सबसे जास्ती उसकी हुई है तो जरूर उसने ऐसा कोई सबसे जास्ती कर्म भी किया है कर्म इंद्रियों से जिससे उसकी पूजा सबसे जास्ती होती है। तो उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की हैं। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है और ज्ञान सुनाते कहाँ से हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? सागर है तो इसी सृष्टि पर आकर के वो सागर प्रत्यक्ष होगा ना। ऊपर से कैसे प्रत्यक्ष होगा? यहाँ नीचे आया है ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। क्या ब्रह्मा तन द्वारा कहते हैं मुझे याद करो? डायरेक्ट याद भी मेरे को करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि बाप तो नीचे आए हुए हैं ऊपर तो नहीं है। ये समझ की बात है ना। लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है। माया ये याद की बात भी बुद्धि से उड़ाई देती क्योंकि माया जो है माया रावण का काम क्या है? सिंगल बनाना, राम को सीता से जुदाई देना। फिर सीता से कहता है मेरे को याद कर मेरी तरफ देख। तो माया बड़ी जबरदस्त है एकदम मुंह फिरा करके पिछाड़ी कर देती है। राम से मुंह घुमाती है और विमुख कर देती है। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा के सामने है। तुम्हारे कांध को शिव बाबा ने अपने सामने कर लिया। सन्मुख बैठे हो फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं तो बाबा बताओ उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। शिव बाबा को मानते हैं और ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। शिव बाबा ने जिसके तन का आधार लिया परमात्मा तो उसको इतना महत्व दे रहा है और तुम उसको महत्व देते नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? कि दुर्गति होने वाली है। कुछ भी ज्ञान नहीं है। मनुष्य पुकारते भी हैं वो गॉड फादर, फिर ये गॉड फादर सुनता है क्या? उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ या वहां बैठे लिबरेट करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम के ऊपर बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दें तो फिर क्या कहेंगे? जिसमें आया उसी को उड़ा दिया। नंबर वन तमो प्रधान हो गए फिर। अगर ब्रह्मा जिसमें बाप आते हैं उसी को माना नहीं, साकार को नहीं माना और सिर्फ निराकार को माना तो क्या साबित हुआ? कि वो हो गए नंबर वन तमो प्रधान। ज्ञान लेने के बाद भी निश्चय होते हुए माया एकदम मुंह फिराए देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम बर्थनाते पैनी बनाई देती, एकदम महामूर्ख बनाई देती। ऐसे भी कोई न कोई सेंटर्स पर हैं, इसलिए बाप कहते हैं इनसे खबरदार रहना। क्या ऐसों का संग का रंग न लग जाए जो कहते हैं निराकार बाप को याद करो। वो भी तो निराकार को याद करता है। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। वो किसको याद करता है? तो जब वो डायरेक्ट ले सकता है तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते? अरे वो तो डायरेक्ट इसलिए ले सकता है कि उसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। इसलिए ले सकता है। क्या तुम्हारे अंदर शिव बाप प्रवेश करता है?
नहीं।
क्या शिवो हम हो गए?
नहीं।
फिर तो तुम डायरेक्ट कैसे याद करोगे? तो एकदम दर्शनाते पैनी बन पड़ते हैं। इसलिए बाप कहते हैं इनसे खबरदार रहना। किनसे? जो ये कहते हैं कि सिर्फ बिंदु बाप को निराकार को याद करो तो हम भी प्राप्ति करेंगे। अगर वो प्राप्ति कर सकता है एक निराकार को याद करके तो हम भी जरूर कर सकते हैं। बाप कहते हैं ऐसों से खबरदार रहो। बल किसको सुनाते भी रहे हैं, सुनी हुई बातें जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। ऐसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं, उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। तो ये भी एक कहानी बनाई हुई है कि जिसको सुनाते हैं वो तो पार हो जाते हैं, लेकिन सुनाने वाले में खुद धारणा नहीं है तो वो डूब जाते हैं। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से फिर सागर में जाते हो। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं, ऐसी बातें तो होती नहीं। ये कहानी बनाई हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल सेट खाते में था, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो तो उनका असर क्या होगा? तो ऐसे भी ब्रह्मा कुमार हैं, खुद निश्चय नहीं है और दूसरों को सुनाते रहते हैं। किस बात पे निश्चय? निश्चय यहाँ खास किस बात का करना होता है? बाप का निश्चय। बाप का तो निश्चय है कि बाप ज्योति बिंदु है,
बाप की पहचान।
हाँ, निश्चय का मतलब ये है कि वो ज्योति बिंदु बाप किस व्यक्त तन के द्वारा कार्य कर रहा है, इसी बात में निश्चय निश्चय की बात पैदा होती है। बाकी बिंदु बाप ज्योति बिंदु है ये कोई निश्चय नहीं, वो तो हम भी आत्मा बिंदु है, इसमें निश्चय निश्चय की क्या बात? सभी आत्मा ज्योति बिंदु है। तो खुद में निश्चय नहीं है, दूसरों को सुनाते रहते हैं, इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले पीछे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वो जरूर प्यारे तो लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। तो प्रैक्टिकल याद क्या हुई और इम्प्रैक्टिकल याद क्या हुई? बिंदु को याद किया तो इन प्रैक्टिकल याद हो गई। और बिंदु जिसमें प्रवेश करके स्वर की स्थापना करता है, राजधानी स्थापन करता है, विश्व की बादशाही देता है, पतितों को पावन बनाता है, तो वो प्रैक्टिकल याद हो गई। साकार में निराकार को याद करना ये प्रैक्टिकल याद हो गई। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती, उनकी बुद्धि में भी ऐसे संकल्प चलते हैं कि हम साकार को या ब्रह्मा को या जिसमें शिव बाबा आते हैं उसको हम नहीं मानेंगे, बाकी हम शिव ज्योति बिंदु को तो मानते हैं। बहुत आपको हो गए, बाबा भी समझते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं है, जब तक लड़ाई तैयार न हो। कर्मातीत अवस्था कब बनेगी? जब लड़ाई तैयार हुई पड़ी हो। एक तरफ लड़ाई होगी और दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। किस बात का? लड़ाई का और कर्मातीत अवस्था का। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे, लड़ाई पूरी होगी और राजाई शुरू हुई, तो राजाई शुरू हुई तो जैसे ट्रांसफर हो गए, कहाँ से कहाँ? नरक से स्वर्ग। लड़ाई पूरी होना माना मानसिक संघर्ष खलास, और मानसिक संघर्ष खलास हो गया माना मनन चिंतन मंथन की भी स्टेज से ऊपर निसंकल्प स्टेज में आत्मा पहुंच गई, फिर तो अमर लोक ही अमर लोक है। तो पहले रुद्रमाला बनती, इस कर्मातीत अवस्था में पहुंचने वाले मन के पहले कितने होंगे? 108 नंबर बार। हाँ, रुद्रमाला पहले उस स्टेज से पासार होती है। रुद्रमाला है पुरुष वृत्ति वालों की, चाहे स्त्री चोला हो चाहे पुरुष चोला हो, लेकिन वो स्वभाव संस्कार से क्या होंगे? पुरुष वृत्ति के होंगे। लड़ाई लड़ते हुए पुरुषों को दिखाया है या स्त्रियों को?
पुरुषों को दिखाया।
पुरुषों को दिखाया है, पुरुष ही लड़ाई लड़ते हुए दिखाए गए। तो रुद्रमाला के मन के सब पुरुष वृत्ति के, उनको लड़ाई से पसार जरूर होना पड़ेगा। स्त्रियां लड़ाई लड़ने जाती हैं या पुरुष जाते हैं?
पुरुष जाते हैं।
पुरुष जाते हैं। तो पहले रुद्रमाला बनती है, ये बातें और कोई नहीं जानता है, वो तो सिर्फ एक ही माला बताएंगे। बाप कहते हैं दो मालाएं, एक रुद्रमाला और दूसरी विजयमाला। तुम समझते हो उस दुनिया को बदलना है? कौन सी दुनिया को? जिनको कुछ पता ही नहीं है वो तो समझते हैं अभी तो हजारों वर्ष पड़े हैं। क्या समझते हैं? हजारों वर्ष पड़े हुए हैं। खूब मौज साधन अपनाते चले जाओ, जीवन में आनंद भोगो, महलमाड़ियां बनाओ। अभी तो दुनिया खलास होने में बहुत लंबा टाइम है। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है, इसमें टाइम अब नहीं है। अब तुम हो मेनॉरिटी जो ये समझते हो कि दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम बहुत थोड़े हो। और वो है मेजॉरिटी जो समझते हैं कि दुनिया तो अभी पता नहीं कितना लंबा समय चले। तो तुमको कौन मानेगा जब तुम मेनॉरिटी हो, थोड़ी संख्या में हो? दुनिया किस तरफ भागती है? जिधर हुजूम ज्यादा देखेंगे उधर भाग खड़े होंगे। भेड़ चाल है दुनिया की। क्या भेड़ किधर जाती हैं? हाँ, तो हुजूम जो है वो नहीं देखना चाहिए, पावर देखनी चाहिए। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच करके तुम्हारी तरफ आ जाएगी। अभी तुम्हारी तरफ थोड़े क्यों खींच करके आ रहे हैं? है? क्योंकि योग बल नहीं है। योग बल क्यों नहीं है? अरे अकेला चना क्या बाहर फोड़ेगा? है? अकेले चने के बोते बाहर फूट जाएगा क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ, तो जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तो संगठन का बल बढ़ जाएगा। अगर अकेले से ही सारा काम हो जाए फिर तो शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मा को पकड़ ले या प्रजापिता को पकड़ ले और सारा कार्य संपन्न कर दे। तो बहुत खींच करके आएंगे जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी। जितना तुमसे कट निकलती जाएगी उतना बल बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है। क्या बाबा तो सब जानते हैं, यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। ऐसे नहीं कि पहले से ही जानते हैं। आंखों से देखा, उनकी चलन को परखा, तब उनके अंदर को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? अवस्था को तो जानेंगे, लेकिन किन बच्चों की अवस्था को जानेंगे? जो बच्चे बाप के सामने आएंगे। जो आए ही नहीं है, बच्चे बने ही नहीं है, उनके अंदर को क्यों जानेंगे? सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं है। अब तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है क्या? अभी कोई कह नहीं सकता कि हमारी कर्मातीत अवस्था हो गई। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाती है। जब तक आसुरी चलन है, आसुरी बातचीत है, तब तक कर्मातीत अवस्था फाइनल नहीं कह सकते। अब तो दैवी चलन बनानी, देवता है तो सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। ये नहीं कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम होता हूँ। क्यों? हैं? हाँ, चक्र में नहीं आते। हाँ, नित्य अनित्य के चक्र में तो आते ही नहीं, जन्म मरण के चक्र में तो आते ही नहीं। इसलिए उनको जब चक्र से ही परे हो गए तो जरूर क्या हो गए, कर्म से भी परे हो गए, कर्मातीत स्टेज हो गई। और जब कर्मातीत स्टेज हो गई तो कर्म का फल लग नहीं सकता। इसलिए बोला मैं विनाश ऐसे से कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। दूसरा पेज तो ऐसा बनना है, कैसा? सर्वगुण संपन्न आदि। कहाँ वो आचार्य, कहाँ देवता है? परंतु माया किसको छोड़ती नहीं है, छुई हुई बनाई देती है, एक दम मार डालती है। पांच पीढ़ी है ना, देह विमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं, गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय लेते हैं, एकदम 21 मार से कूद पड़ते हैं, 21 मंजिल से पहुंच रहे थे 21वीं मंजिल में, पुरुषार्थ करते करते 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाले थे, लेकिन क्या करते हैं, इतने साहसी हैं कि वहां से कूद पड़ते हैं। तो एकदम खत्म हो जाए, 21वीं मंजिल से गिरेगा तो एकदम खलास तो हो जाए। ऐसा न हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे, बाबा को डर लगता है। इसकी हिम्मत करने की दरकार नहीं है, दुख भोगते रहे। पांच मंजिल से गिरे और न मरे तो देखो दुख तो भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। मान लो किसी ने मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा ली, मिट्टी का तेल माना देह अभिमानी की मिट्टी का तेल डाल लिया और आग लगा ली। देह अभिमानी की मिट्टी जब धारण कर ली तो क्या होगा, है शरीर रूपी वस्त्र तो देह अभिमान से सराबोर हो गया, और फिर उसमें तीली लगा दी काम आगनी की, तो वो तो जलेगा, और जब जलेगा तो फिर क्या होगा, मरेगा नहीं। तो कम से कम कोई तो अगर मान लो बचा लेता है कोई मरने से, तो झुलसता तो रहेगा, जलन होती रहेगी। तो जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी। इसलिए जीव घात कहते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे। ये है ही अपार दुखों की दुनिया। कोई जीव घात करने से छूट नहीं सकता है। क्या यहाँ ज्ञान में भी चलने वाले बहुत ऐसे ऐसे हैं कि चलते रहेंगे और फिर जानबूझ करके घास तेल अपने ऊपर डालेंगे, देह अभिमानी की मिट्टी की तेल की, और उससे क्या होगा, अपने को काम आगनी में भस्म कर देंगे, कोशिश करेंगे कि काम आगनी में बिल्कुल भस्म हो जाए। लेकिन ये तो जीव घात हुआ, आत्मा का तो घात हो ही नहीं सकता। ये है अपार दुखों की दुनिया। ऐसे जीव घात करने वाले महापापी की लिस्ट में चले जाते हैं, फिर दोबारा जन्म लेते हैं, तो फिर उनको भोगना भोगनी पड़ती है। वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, कहाँ जाते हैं, हैं? रिटर्न होते हैं, उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, दुखधाम से सुखधाम में जाते हैं। अब बाप जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं, चित्र भी तो है, ब्रह्मा द्वारा राज्यों की स्थापना, तो जब चित्र बना हुआ ब्रह्मा द्वारा राजयोग की स्थापना,